तापीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन। इस प्रदूषण का स्रोत मुख्यतः तापीय विद्युत गृह है। इस विद्युत गृह से दो प्रदूषक ही गणना योग्य हैं और वह दोनों ही बहुत भयानक और दूरगामी पानी पहुंचाने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर वन देखिए, विद्युत गृह चिमनी से निकलने वाली राख, जो अधिक ताप के कारण भी हानिकारक है और जहाँ पर फैलती है वहाँ की वनस्पति, पेड़ पौधे एवं फसलों को नष्ट कर देती है। नंबर दो देखिए, संपूर्ण प्रक्रिया के बाद बहुत अधिक ताप वाले पानी का निकलना और उसका उसी स्रोत में मिल जाना जहाँ से विद्युत गृह के संयंत्र को चलाने और उसे ठंडा करने के लिए जल लिया जा रहा है, उससे उस जल के जलीय जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनेक जीवन समाप्त हो जाते हैं और मछलियां अथवा अन्य जानवरों के लिए यह शून्य स्थल बन जाते हैं। तापीय प्रदूषण के सुरक्षा के उपाय, अगर हम इससे सुरक्षा करें तो क्या क्या सुरक्षा हो सकती है। सेफ्टी मेजर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन, इसके उपाय निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला नंबर, संयंत्र से निकलने वाले उच्च ताप के जल को फव्वारे के रूप में अधिक क्षेत्र में फैलने दिया जाए। दूसरा, ताप सहन स्तर तक आ जाए तब ही उसे पुनः स्रोत में मिलने दें। तीसरा, राख को अधिक क्षेत्र में बिखरने से रोकने के लिए कुछ कृत्रिम साधन अपनाने होंगे। राख का उपयोग अब इमारत बनाने के लिए ईंटों के लिए किया जाता है और वह सफल हुआ है। अगला देखिए, इसमें प्रदूषण समस्या भी कम होगी और प्रदूषण का अच्छा उपयोग भी होगा। आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन या न्यूक्लियर प्रदूषण। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका मानव जीवन में बहुत महत्व है। इसको आजकल चिकित्सा, कृषि उद्योग, रक्षा उद्योग आदि में उपयोग किया जाने लगा है, परंतु रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम बहुत ही भयंकर हैं। इससे जल, थल तथा हवा बहुत प्रभावित होती है। अमेरिका द्वारा जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध में जब परमाणु बम डाला गया था तो उसके विकिरण से इतना भयानक विनाश हुआ जिसकी कल्पना शायद उस समय अमेरिका ने की भी नहीं होगी। आज उससे भी अधिक हानिकारक हथियार मनुष्य ने बनाए हैं। यदि उनका कभी प्रयोग हुआ तो मानव जाति पर रेडियोधर्मी विकिरण से होने वाले हानिकारक प्रभावों की कल्पना करना भी कठिन है। विकिरण के दो स्रोत हैं। सबसे पहला आपका आता है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज। अंतरिक्ष किरणें तथा पृथ्वी में स्थित रेडियो न्यूक्लियोलाइट्स से निकलने वाली किरणें, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 235, थोरियम 232, रेडान 222 आदि। दूसरे नंबर पे है मानव निर्मित विकिरण। प्लूटोनियम तथा थोरियम का खनन, शुद्धिकरण, न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विस्फोट, अनुसंधान तथा अस्पतालों में प्रयोग आदि। इसके अंतर्गत आता है पहला न्यूक्लियर विपॉन्स, जिसको हम कहते हैं। इनसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, स्ट्रोंसियम 90, सेसियम 137 आदि का विकिरण वातावरण में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर तथा ईंधन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल्स। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाने वाले शीतलक तथा स्वयं ईंधन दोनों से रेडियोधर्मी प्रदूषण की प्रबल संभावना रहती है। और अदर सोर्सेज या अन्य स्रोत को हम देखते हैं, इनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप आते हैं जिनका प्रयोगशाला तथा अनुसंधानों में प्रयोग होता है। जो विकिरण है ये बड़े हानिकारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनायनिक, नॉन लाइनिंग, जैसे यूवी विकिरण, तथा दूसरा है आयनकारी, जैसे एक्स किरणें या कण। आयनकारी विकिरणों के तीन प्रकार हैं। पहला अल्फा कण, इसमें स्थानीय विकिरण होता है। इसमें दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से बना हुआ हीलियम न्यूक्लियस होता है। दूसरा है बीटा कण, ये इलेक्ट्रॉन है जिनकी गति बहुत तीव्र होती है, ये ऊतकों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा है गामा विकिरण, ये किरणें जीवों में प्रवेश करके बाहर निकल सकती हैं। इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं देखिए। सबसे पहला होता है पौधों में कोशिका विभाजन तथा वृद्धि एवं विकास पर इनका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आयनकारी विकिरण से कुछ हफ्तों तथा दिनों में जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। तीसरा है, इनमें आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों में देखे जा सकते हैं। चौथा है कैंसर, ट्यूमर, चर्म रोग इत्यादि। पांचवा है अनायनिक विकिरण, इसमें यूवी विकिरण मुख्य रूप से आते हैं। इनमें डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन में परिवर्तन हो सकते हैं जो जीवों तथा पौधों के लिए घातक हो सकते हैं। छठा है नाभिकीय विस्फोट से उस क्षेत्र के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। इनसे निकलने वाले विकिरण से अस्थि मज्जा, श्वेत, रुधिर कण आदि को हानि पहुंचती है। अगला है आपका कि समुद्र में होने वाले नाभिकीय विस्फोटों से समुद्री जीव प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला देखते हैं, अस्थि कैंसर, त्वचा का कैंसर, बहरापन, दृष्टि दोष आदि। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर शीतकाल, नाभिकीय विस्फोटों के कारण रक्षात्मक ओजोन परत को खतरा हो सकता है। इस परत के नष्ट होने पर पृथ्वी का तापमान कम होने की संभावना है। नदी, तालाब आदि में बहुत गहराई तक बर्फ जम जाती है। इन परिवर्तनों को न्यूक्लियर शीतकाल कहते हैं। नियंत्रण अर्थात कंट्रोल कैसे किया जाए, नाभिकीय विस्फोटों पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा रेडियोधर्मी व्यर्थ पदार्थों का विसर्जन अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए। आजकल के प्रगतिशील युग में रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध असंभव है। तो हम देखते हैं कि बहुत तरह की हानियां इन न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण होती हैं, जिससे मनुष्य का जनजीवन और पूरी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अगली क्लास में मैं आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, समाज का कल्याण करें। धन्यवाद।